एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम किताब पर, माइकल सैंडल की जस्टिस, व्हाट्स द राइट थिंग टू डू।
हाँ, हिंदी में कहें तो न्याय, सही काम क्या है।
और ये किताब ना सीधे उन सवालों से जूझती है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं।
बिल्कुल, क्या सही है क्या गलत, एक अच्छा समाज वो कैसा दिखता है।
और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बातें नहीं है, है ना, ये तो हमारी रोज की जिंदगी, हमारे फैसले,
हमारी बहसें, सबको असर करती हैं ये चीजें।
हाँ, और आजकल तो शायद ये और भी जरूरी हो गया है। बाजार का रोल क्या हो, व्यक्तिगत आजादी कहाँ तक, समाज की भलाई, मतलब क्या है इसका, इन सब पर तो रोज ही बहस छिड़ी रहती है।
सही बात है, और सैंडल की खास बात यही है, वो दिखाते हैं कि इन सारी बहसों के पीछे ना न्याय के अलग अलग विचार कैसे काम करते हैं।
हाँ,
वो ये भी कहते हैं कि हम अक्सर इन मुश्किल नैतिक सवालों से बच निकलते हैं।
कन्नी काट जाते हैं।
हाँ, और उससे होता क्या है कि हमारी जो पब्लिक डिबेट्स हैं वो खोखली रह जाती हैं। क्या न्याय बस नियम मानना है, या इसका कुछ लेना देना अच्छे समाज से, अच्छे जीवन से भी है।
बिल्कुल, सैंडल हमें इन्हीं सवालों के बीच ला खड़ा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लें, माइकल सैंडल।
हाँ जरूर, माइकल सैंडल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कई दशकों से, मतलब 30 साल से भी ज्यादा से पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं।
पर वो सिर्फ क्लासरूम वाले प्रोफेसर नहीं है, उन्हें दुनिया के सबसे जाने माने पब्लिक फिलॉसफर्स में गिना जाता है।
और उनकी यही बात मुझे कमाल लगती है, वो इतने मुश्किल, इतने गहरे दार्शनिक विचारों को इतने आम तरीके से समझाते हैं, बहुत दिलचस्प अंदाज में।
हाँ, कोई भी जुड़ सकता है।
उनका वो हार्वर्ड कोर्स जस्टिस सुना है, बहुत ही पॉपुलर हुआ था, इतना कि टीवी पर, ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल कराया गया। सोचिए जरा, फिलॉसफी का कोर्स इतना हिट।
बिल्कुल, और उनका बड़ा योगदान यही है, फिलॉसफी को अकादमिक दुनिया से बाहर निकालकर आम बहस का हिस्सा बनाना।
सही,
वो सिर्फ थ्योरी नहीं बताते, असल जिंदगी की मुश्किलें उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तूफान आया, उसके बाद जरूरत की चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ा देना, क्या ये सही है?
मुश्किल सवाल है।
या फिर क्या मिलिट्री सर्विस सबके लिए जरूरी होनी चाहिए, सेम सेक्स मैरिज? इन उदाहरणों से वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई न्याय आखिर है क्या चीज।
तो फिर किताब पर लौटते हैं, इसका सार क्या है? मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन तो नहीं है जैसा आपने कहा।
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का बुलावा है कि हम अपने समाज में मूल्यों पर, नीतियों पर, और जिसे कॉमन गुड कहते हैं, साझा भलाई, उस पर और गहराई से बात करें, ईमानदारी से।
अच्छा,
और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि न्याय को ना किसी एक सिंपल फॉर्मूले में फिट नहीं कर सकते। सैंडल कहते हैं न्याय को समझने के 3 मुख्य रास्ते हैं, और अक्सर ये रास्ते टकराते भी हैं आपस में।
3 रास्ते कौन कौन से?
पहला है कल्याण, वेलफेयर को बढ़ाना, मतलब वो काम सही जिससे ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा खुशी मिले। इसे कहते हैं उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म।
अच्छा, उपयोगितावाद मतलब ज्यादा लोगों का ज्यादा सुख।
हाँ। दूसरा रास्ता है स्वतंत्रता, फ्रीडम का सम्मान करना, हर व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने की आजादी हो, उसके अधिकारों का हनन ना हो। इसमें फिर वो लिबर्टेरियन सोच आती है, लिबरल सोच आती है।
ठीक है, स्वतंत्रता। और तीसरा?
तीसरा है सद्गुण को बढ़ावा देना और साझा भलाई को साधना, मतलब न्याय सिर्फ नियम या अधिकार नहीं है, सवाल ये भी है कि अच्छा समाज कैसा हो, अच्छे नागरिक कैसे बने।
सद्गुण, ये तो अरस्तु वगैरह की याद दिलाता है।
बिल्कुल, इसकी जड़ें वहीं तक जाती हैं, अरस्तु जैसे पुराने दार्शनिकों तक।
तो सैंडल कह रहे हैं कि न्याय इन तीनों के बीच एक तरह की खींचतान है या संवाद है।
हाँ बिल्कुल,
और उनकी चिंता ये है कि हम आजकल, खासकर वो तीसरी बात, सद्गुण वाली, अच्छे जीवन वाली, उस पर पब्लिक में बात करने से हिचकिचाते हैं।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सैंडल मानते हैं कि नैतिक असहमति से भागना वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बल्कि इन मुश्किल सवालों पर खुलकर बहस करना ही हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है। ये किताब यही दिखाती है कि न्याय पर सोचना कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये तो साथ रहने की एक जरूरत है, प्रैक्टिकल जरूरत।
दिलचस्प, तो चलिए अब जरा इन 3 रास्तों में और गहरे उतरते हैं। सैंडल कैसे खोलते हैं इन्हें? शुरुआत शायद उपयोगितावाद से करते हैं।
हाँ, पहला रास्ता वही है।
वो मशहूर ट्रॉली प्रॉब्लम भी यहीं आती है ना?
हाँ, किताब की शुरुआत ही ऐसी नैतिक दुविधाओं से होती है जो दिमाग घुमा देती हैं। जैसे वही ट्रॉली प्रॉब्लम, एक बेकाबू ट्रॉली है, पांच लोगों की तरफ बढ़ रही है। आप एक लिवर खींचकर उसे दूसरी पटरी पर मोड़ सकते हैं जहां सिर्फ एक आदमी है। क्या आप ऐसा करेंगे?
शायद ज्यादातर लोग हाँ कहेंगे, पांच को बचाने के लिए एक।
बिल्कुल, लेकिन अगर सिचुएशन बदल दें, लिवर नहीं है, आपको उस एक आदमी को धक्का देकर पटरी पर गिराना है ताकि ट्रॉली रुक जाए और वो पांच बच जाएं।
अब ओ नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, धक्का देना ही अलग लगता है,
है ना? यहीं से पता चलता है कि हमारे नैतिक विचार कितने उलझे हुए हैं। और यहीं सैंडल हमें जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद से मिलवाते हैं, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख।
यानी जो फैसला ज्यादा लोगों को खुशी दे, बस वही सही है।
सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है।
हाँ,
जैसे वो उदाहरण देते हैं, अगर किसी एक संदिग्ध आतंकवादी को टॉर्चर करके हजारों जाने बचाई जा सकती हों, तो क्या ये जायज है? उपयोगितावाद का तर्क शायद कहेगा,
हाँ पर ये तो खतरनाक भी हो सकता है।
बिल्कुल, यही उपयोगितावाद की अपील भी है और उसका खतरा भी। वो सिर्फ नतीजों पर ध्यान देता है, लेकिन आलोचक पूछते हैं, क्या इसमें व्यक्ति के अधिकारों का कोई मोल नहीं? क्या हर चीज को सुख दुख के तराजू पर तोला जा सकता है? इंसानी गरिमा का क्या?
हाँ ये तो है।
जॉन स्टुअर्ट मिल ने बाद में कोशिश की थी इसमें सुधार की, ऊंचे और नीचे दर्जे के सुखों में फर्क करके, पर वो मूल सवाल तो बना ही रहता है।
तो अगर उपयोगितावाद में व्यक्ति कहीं पीछे छूट जाता है, तो दूसरा रास्ता स्वतंत्रता वाला शायद इसी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है, लिबर्टेरियनिज्म, जैसा आपने कहा था।
बिल्कुल, लिबर्टेरियनिज्म यानी स्वतंत्रतावाद का मूल मंत्र है आत्मस्वामित्व,
सेल्फ ओनरशिप।
आत्मस्वामित्व मतलब
हम अपने शरीर, अपनी मेहनत, अपनी संपत्ति के खुद मालिक हैं। सरकार का काम बहुत कम होना चाहिए, बस हमारी सुरक्षा करे, कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाए।
अच्छा, रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारक तो यहाँ तक कहते हैं कि टैक्स लगाना, खासकर अमीरों से लेकर गरीबों में बांटने वाला टैक्स, वो एक तरह की जबरन मजदूरी है।
अरे बापरे, जबरन मजदूरी! तो इस नजरिए से तो फिर वेलफेयर स्कीम्स, सब्सिडी या वो नियम के भाई सीट बेल्ट पहनो, ये सब गलत हुए।
हाँ, स्वतंत्रतावादी तर्क यही कहेगा, ये सब हमारी आजादी में दखल है।
तो क्या ये लोग कहेंगे कि अगर मैं अपनी किडनी बेचना चाहूँ तो मुझे हक होना चाहिए?
हाँ, लॉजिक तो यही बनता है, अगर हम वाकई अपने मालिक हैं तो हमें अपने शरीर और संपत्ति के साथ जो चाहे करने की आजादी होनी चाहिए, शर्त बस ये कि किसी और को नुकसान ना हो।
लेकिन इसकी भी तो अपनी मुश्किलें होंगी, क्या इससे समाज में असमानता बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी?
बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है।
और क्या वाकई हम सिर्फ अपने हैं, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, खासकर अगर समाज से हमें इतना कुछ मिला हो?
सही सवाल है, ये सवाल स्वतंत्रतावाद को कटघरे में खड़ा करते हैं।
वाकई सोचने वाली बात है, मतलब ना तो सिर्फ सबका सुख देखना काफी है, ना सिर्फ सबकी आजादी, तो फिर क्या? आपने कांट का जिक्र किया था, उनका नजरिया कैसे अलग है?
इमैनुअल कांट, हाँ, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है, बहुत प्रभावशाली भी। उनके लिए न्याय का आधार न तो नतीजा है जैसे उपयोगितावाद में, न ही सिर्फ व्यक्तिगत पसंद जैसे स्वतंत्रतावाद में। उनके लिए न्याय का आधार है कर्तव्य, ड्यूटी, और सही इरादा, मोटिव।
कर्तव्य और इरादा,
हाँ, और इन सब का मूल क्या है? मनुष्य का सम्मान, क्योंकि हम तर्क करने वाले प्राणी हैं, रैशनल बीइंग्स। कांट कहते हैं, हमें कभी भी किसी इंसान को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर इंसान अपने आप में एक लक्ष्य है, एन एंड इन इटसेल्फ।
सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है?
कांट का एक मशहूर सिद्धांत है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, निरपेक्ष अनिवार्यता।
कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
आसान शब्दों में कहें तो कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं चाहूंगा कि दुनिया में हर कोई हमेशा ऐसे ही काम करे?
अच्छा,
जैसे झूठ बोलना। क्या ये सही है? कांट कहेंगे, नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सब झूठ बोलने लगें तो भरोसे का आधार ही खत्म हो जाएगा, फिर झूठ बोलने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए सच बोलना हमारा कर्तव्य है, चाहे नतीजा कुछ भी हो।
लेकिन ये कुछ ज्यादा सख्त नहीं लगता? मान लीजिए किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, क्या तब भी झूठ बोलना गलत होगा? ये थोड़ा अव्यवहारिक सा नहीं है?
ये कांट के दर्शन की एक आम आलोचना है कि वो बहुत कठोर हैं, अपवादों की गुंजाइश नहीं छोड़ता, लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि नैतिकता परिस्थितियों के हिसाब से बदलनी नहीं चाहिए, वो यूनिवर्सल होनी चाहिए।
खैर, ये भी एक नजरिया है। इनके बाद आपने जॉन रॉल्स का नाम लिया था, 20वीं सदी के विचारक?
हाँ, जॉन रॉल्स। उन्होंने समानता पर जोर दिया और न्याय के सिद्धांत तय करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका सुझाया।
हाँ, वो अज्ञान का पर्दा वाला आइडिया, वेल ऑफ इग्नोरेंस, सुना है मैंने। क्या था वो ठीक से?
रॉल्स कहते हैं, कल्पना करो, हम सब मिलकर समाज के नियम बना रहे हैं, लेकिन एक अज्ञान के पर्दे के पीछे से। मतलब हमें ये नहीं पता कि समाज में हमारी जगह क्या होगी, हम अमीर होंगे या गरीब, किस जाति धर्म लिंग के होंगे, हमें क्या टैलेंट होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता।
अच्छा, ऐसी हालत में तो
जाहिर है हम ऐसे नियम बनाना चाहेंगे जो सबके लिए निष्पक्ष हों, क्योंकि क्या पता हम खुद कहाँ हों।
बिल्कुल, एग्जैक्टली। रॉल्स कहते हैं कि इस पर्दे के पीछे से हम दो मुख्य सिद्धांत चुनेंगे। पहला, हर किसी के लिए बुनियादी स्वतंत्रताएं बराबर हों, जैसे बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी वगैरह।
ठीक है, ये तो समझ आता है।
और दूसरा, जिसे वो कहते हैं अंतर सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल। मतलब समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हो सकती हैं, पर सिर्फ तब जब वो समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। अरे वाह, मतलब अमीर और अमीर बने कोई बात नहीं, पर तभी जब उससे गरीबों का भी कुछ भला हो रहा हो।
ये तो स्वतंत्रता और समानता के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश लगती है।
हाँ, रॉल्स का सिद्धांत यही कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो, हम किस परिवार में पैदा हुए, हम में क्या टैलेंट है, ये बहुत हद तक किस्मत की बात है।
सही बात है।
तो जो लोग भाग्यशाली हैं, उनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद करें जिससे कम भाग्यशाली लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। हमने उपयोगितावाद देखा, स्वतंत्रता देखी, कांट का कर्तव्य देखा, रॉल्स के निष्पक्षता, अब वो तीसरा रास्ता क्या था?
सद्गुण वाला।
अरस्तु का नाम लिया था आपने।
हाँ, अरस्तु, एरिस्टोटल। उनका नजरिया इन सबसे काफी अलग है। उनके लिए न्याय का ताल्लुक है चीजों के उद्देश्य से, उनके टेलोस से और सम्मान से।
उद्देश्य, टेलोस, मतलब
किसी चीज का न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे हो, ये जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि उस चीज का मकसद क्या है, उसका सार क्या है।
अच्छा, कोई उदाहरण है इसका?
अरिस्तु का क्लासिक उदाहरण है बांसुरी का। मान लीजिए कुछ बहुत अच्छी बांसुरियां हैं, किसे मिलनी चाहिए? सबसे अमीर आदमी को,
या सबसे सुंदर दिखने वाले को,
या फिर उसे जो सबसे अच्छा बांसुरी बजाता है?
शायद सबसे अच्छे बांसुरी वादक को।
अरिस्तु कहेंगे, बिल्कुल, सबसे अच्छे बांसुरी वादक को। क्यों? क्योंकि बांसुरी का टेलोस, उसका मकसद ये अच्छा संगीत पैदा करना, और सबसे अच्छा वादक ही उस मकसद को सबसे अच्छे से पूरा कर सकता है।
अच्छा, तो मतलब चीजें या पद उन्हें मिलने चाहिए जो उनका सही इस्तेमाल कर सकें, उनके उद्देश्य को पूरा कर सकें। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि राजनीति का मकसद सिर्फ कानून बनाना या व्यवस्था चलाना नहीं है।
हाँ, अरिस्तु के लिए राजनीति का उद्देश्य है अच्छे नागरिक तैयार करना, सद्गुण यानी अच्छे नैतिक गुणों को बढ़ावा देना।
अच्छा नागरिक बनाना।
हाँ, न्याय का मतलब है लोगों को वो देना जिसके वो हकदार हैं, और हकदारी तय होती है उनके गुणों से, समाज में उनके योगदान से।
ये नजरिया तो आजकल की राजनीति से बहुत अलग लगता है। आजकल तो ज्यादातर यही माना जाता है कि सरकार को लोगों के निजी नैतिक मामलों में उनके अच्छे बुरे की परिभाषा में दखल नहीं देना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए।
बिल्कुल, और यहीं पर सैंडल अपनी बात रखते हैं। किताब के आखिर में वो यही तर्क देते हैं कि देखो, उपयोगितावाद और स्वतंत्रता पर आधारित सिद्धांत जैसे कांट या रॉल्स के जरूरी हैं, पर वो न्याय की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। वो सम्मान, नागरिक कर्तव्य, साझा भलाई जैसे पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। सैंडल कहते हैं कि सरकार का नैतिक मुद्दों पर पूरी तरह न्यूट्रल रहने का दावा वो एक भ्रम है।
भ्रम कैसे?
क्योंकि कानून हमेशा किसी न किसी नैतिक मूल्य को दर्शाते ही हैं, चाहे हम माने या ना माने। इसलिए हमें अच्छे जीवन, सद्गुण, साझा भलाई जैसे सवालों पर सार्वजनिक बहस से कतराना नहीं चाहिए,
बल्कि करनी चाहिए। तो सैंडल एक तरह से अरस्तु वाले नजरिए को वापस लाने की बात कर रहे हैं।
हाँ,
आज के संदर्भ में कि हमें मिलकर ये तय करना होगा कि हम कैसा समाज चाहते हैं।
हाँ,
किन मूल्यों को हम महत्व देते हैं।
हाँ, सार यही है। उनका मानना है कि नैतिक असहमतियों पर खुलकर सम्मान के साथ बहस करना, यही एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है और न्याय की तलाश का हिस्सा भी। जैसा वो कहते भी हैं, कोट करूं तो,
हाँ जरूर,
एक न्यायपूर्ण समाज प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे जीवन के अर्थ के बारे में एक साथ तर्क करना होगा और अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली असहमतियों के लिए अनुकूल एक सार्वजनिक संस्कृति बनानी होगी।
एक साथ तर्क करना होगा, ये महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी चर्चा से, इस किताब से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं अगर निचोड़ निकालना हो तो?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है जो अभी कही, नैतिक सवालों से बचना नामुमकिन है।
हाँ।
चाहे हम माने या ना माने, हमारे कानून, हमारी नीतियां, हमारे सामाजिक व्यवहार, ये सब किसी न किसी नैतिक विचार पर टिके हैं, तो बेहतर है कि हम इन पर खुलकर सोचें, बात करें।
दूसरी बात शायद ये कि न्याय का कोई एक सिंगल सिंपल फॉर्मूला नहीं है।
बिल्कुल, हर नजरिया उपयोगिता, स्वतंत्रता, सद्गुण कुछ जरूरी बात कहता है, पर कोई भी अकेला पूरा नहीं है। असल जिंदगी की उलझनों को समझने के लिए हमें इन सभी एंगल से देखना होगा।
सही।
तीसरा अहम मुद्दा जो सैंडल बार बार उठाते हैं वो है बाजार की सीमाएं। क्या हर चीज खरीदी बेची जानी चाहिए?
ये बड़ा सवाल है।
वो सवाल करते हैं कि जब हम नागरिक कर्तव्य, मानवीय गरिमा या रिश्ते जैसी चीजों को भी बाजार में ले आते हैं, तो क्या हम अनजाने में उनका मूल्य कम नहीं कर देते?
हाँ, ये सोचने वाली बात है। उनका एक और कोट याद आ रहा है, बाजार न केवल चीजों का आवंटन करते हैं।
बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किन चीजों को बाजार से बाहर रखना जरूरी है।
और शायद चौथा टेकअवे ये कि न्याय सिर्फ अधिकारों और नियमों के बारे में नहीं है, ये चरित्र और समुदाय के बारे में भी है। हम किस तरह के लोग बनना चाहते हैं, एक समाज के तौर पर हम किन गुणों को महत्व देना चाहते हैं, ये सवाल भी न्याय की बहस का हिस्सा है।
बिल्कुल, और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, नैतिक असहमति बुरी चीज नहीं है।
अच्छा।
हाँ, अगर हम सम्मान के साथ एक दूसरे के विचारों को सुनें और उन पर तर्क करें, तो ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत ही करेगा। हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद मिलेगी।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब निकलता है? हम इन विचारों का क्या करें, कहाँ अप्लाई करें इन्हें?
देखिए, एक स्तर पर तो ये हमें अपने खुद है नैतिक फैसलों को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। जब हम किसी दुविधा में हों, तो हम सोच सकते हैं कि क्या मैं सिर्फ नतीजों के बारे में सोच रही हूँ, या किसी के अधिकारों के बारे में, या फिर इस बारे में कि भाई सही काम क्या है, सद्गुण क्या है।
अपने विचारों को परखने में मदद,
हाँ, इससे शायद हम ज्यादा संतुलित फैसला ले पाएं।
और सार्वजनिक बहसों को समझने में भी, जैसे न्यूज में कुछ चल रहा हो, आरक्षण पर, सब्सिडी पर, किसी नए कानून पर।
हाँ बिल्कुल, हम सतही नारों से आगे जाकर ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि बहस के मूल में न्याय के कौन से अलग अलग विचार टकरा रहे हैं, उपयोगितावाद बनाम अधिकार या स्वतंत्रता बनाम साझा भलाई।
इससे शायद बहस कम पोलराइज्ड लगे।
शायद कम से कम दूसरों के नजरिए को समझने में मदद मिलेगी, भले ही हम उनसे सहमत ना हों। और नागरिक के तौर पर हम अपनी राय बनाते समय सिर्फ अपनी पसंद नापसंद से आगे जाकर साझा भलाई के बारे में सोच सकते हैं।
और कामकाज की दुनिया में भी, शायद बिजनेस में।
निश्चित रूप से, बाजार की नैतिकता पर सैंडल के सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे काम का असली टेलोस क्या है। क्या वो सिर्फ पैसा कमाना है, या समाज के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है? मुनाफे और नैतिक जिम्मेदारियों को कैसे बैलेंस करें?
तो कुल मिलाके आपके लिए इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या रहा, सबसे प्रभावशाली बात?
मेरे लिए शायद यही कि न्याय सिर्फ कानूनों या नीतियों का मामला नहीं है, ये हमारे चरित्र, हमारे मूल्यों, हमारे साझा जीवन के लक्ष्यों से गहराई से जुड़ा है। सैंडल हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमें लगातार खुद से और एक दूसरे से ये मुश्किल सवाल पूछने होंगे कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। कोई आसान जवाब नहीं है, पर सवाल पूछना जरूरी है।
और मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि नैतिक सवालों से भागना या ये मान लेना कि सबका अपना अपना सच होता है, ये काफी नहीं है। हमें तर्क करना, बहस करना और असहमतियों के बावजूद एक साझा रास्ता खोजने की कोशिश करना सीखना होगा। ये किताब वाकई सोचने की बहुत सारी खुराक देती है।
हाँ, दिमाग की कसरत कराती है।
और शायद यही पूछना कि सही काम क्या है, ये अपने आप में एक बहुत जरूरी कदम है।
बिल्कुल, और इसी सवाल पर सोचते हुए शायद हम आज की ये चर्चा समाप्त कर सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।